का था, रूह वही, रूप नया।
अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन और मृत्यु, और इसके लेखक हैं गी द मोपासा। सूर्य की तापयुक्त किरणें एक गड्ढे की सरहद के करीब घने वृक्षों को पार करती हुई जानवरों के बाड़े को आलोकित कर रही थी। गायों द्वारा चरी गई घास के नीचे की भूमि अभी भी गीली थी, क्योंकि वर्षा हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। गीली मुलायम मिट्टी पर खुरों के निशान भी ताजे बने नजर आ रहे थे। हरी घास की पृष्ठभूमि में हरे हरे सेब के वृक्ष थे, और उन पर भी कच्चे हरे सेब लदे हुए थे। चार जवान बिछड़ियां एक घूंटे से बंधी थीं और आसपास की घास चर रही थीं, तथा बीच बीच में घर की ओर दृष्टि उठाकर देखती थीं। बाड़े के सामने पड़े खाद के ढेर पर कुछ मुर्गियां अपनी विशिष्ट छटा बिखेर रही थीं। एक आध कीड़ा मिलते ही वो बांग देकर अपने चूजों को पुकारने लगती थी। लकड़ी निर्मित दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स भीतर आया, जो बमुश्किल 40 वर्ष का रहा होगा, किंतु 60 के करीब नजर आ रहा था। झुर्रियोंदार बुझा हुआ निस्तेज चेहरा, घास से भरे लकड़ी के भारी बूटों के साथ चौड़े लेकिन धीमे कदमों के साथ चल रहा था। ज्यों ही वो फार्म तक पहुंचा, तभी नाशपाती के वृक्ष से पीले रंग के घटिया जाति के बंधे कुत्ते ने अपनी पूंछ उठाई और बुरी तरह भौंकना शुरू कर दिया। वो शख्स जोर से चीखा, फिनोट, खामोश हो जाओ। कुत्ते ने अपने मालिक के हुक्म की पालना की और खामोश हो गया। एक ग्रामीण स्त्री घर के भीतर से बाहर आई। उसकी ऊंची पूरी भव्य काया थी। कमर से बंधा एक ढीला ढाला गर्म जैकेट उसके चौड़े भरपूर सपाट बदन को नुमाया कर रहा था। ग्रे रंग का बेहद छोटा स्कर्ट, नीले रंग की स्टॉकिंग भरे हुए पैरों की पिंडलियों तक पहुंच रही थी। वो भी घास से भरे लकड़ी के जूते पहने थी। कभी सफेद रहे और अब पीले पड़ चुके सिर का स्कार्फ उसके बालों को कुछ हद तक ढके हुए था, जो सिर पर ऊपर से खींच कर बांधा गया था। उसका दंतहीन दुबला पतला स्याह चेहरा जंगली जंतु की तरह दिख रहा था, जैसे आमतौर पर ग्रामीण महिला के चेहरों पर नजर आता है। आगंतुक शख्स ने पूछा, अब वो कैसा है? स्त्री ने जवाब दिया, पादरी ने कहा है कि अंतिम वक्त आ गया है, वो शायद ही आज की रात निकाल सके। दोनों साथ साथ मकान में प्रविष्ट हुए। रसोई को पार करके वे शयन कक्ष में गए, जो बेहद छोटा और अंधेरे से भरा था, जिसकी एक पल्ले वाली खिड़की कांच के घिसे हुए भाग से ढकी हुई थी और जो बामुश्किल ही रोशनी को कक्ष में आने दे रही थी। छत पर रखी म्याल पुरानी और मौसम और धुएं के कारण काली पड़ चुकी थी। उसमें ढेर सारे चूहे मस्ती कर रहे थे। कक्ष का मिट्टी वाला फर्श ऊंचा नीचा, सीलन युक्त और बेहद भुरभुरा सा था। कक्ष के पृष्ठ भाग में एक पलंग मटमैला सफेद सा नजर आ रहा था। पलंग से निरंतर व नियमित कठिन सांसों की करकश, खरखराती तथा सीटी की भांति या किसी टूटे हुए पंप की भांति खरखराती सी आवाज आ रही थी। पलंग पर एक वृद्ध शख्स मरणासन हालत में पड़ा हुआ था। वही उस ग्रामीण महिला का पिता था। दोनों स्त्री पुरुष उस वृद्ध शख्स के निकट पहुंचे और बुझे हुए निस्तेज चेहरे पर सपाट तथा उदास भाव लिए मर रहे उस बुढ़े को देखा। दामाद बोला,
ये इनका अंतिम समय है, शायद आज रात तक भी ना खींच सकें।
उसके बाद दोनों खामोश हो गए। पिता के नेत्र बंद थे। उसके चेहरे पर बेनूरी रंगत धूसर मिट्टी की तरह लग रही थी। वो इतना गंभीर भावहीन लग रहा था, गोया लकड़ी की प्रतिमा हो। अधखुले मुंह से रुक रुक कर गहरी सांसें निकल रही थीं। और जिस्म व सीने पर पड़ी लिनन की चादर हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। बेहद लंबी खामोशी के बाद दामाद बोला,
अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है सिवाय इसके कि इनको इसी प्रकार छोड़ दिया जाए। अब इसके अलावा मुझे तो पौधों पर तरस आ रहा है, इतने अच्छे मौसम को देखते हुए उन्हें कल ही रोपना जरूरी है।
ये सोचकर वो अनजाने खौफ से दहल उठी। कुछ देर पश्चात उसने अपनी राय जाहिर की और बोली, सुनो, जैसा कि ये तो जल्दी ही मरने वाले हैं, हम इन्हें शनिवार से पूर्व तो दफना नहीं सकेंगे, रोपने के लिए कल समूचा दिन तुम्हें मिल जाएगा। उसका ग्रामीण पति कुछ देर ठिठका और बोला,
किंतु कल हमें तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए लोगों को भी तो बुलाना होगा ना, और मुझे टॉरविले से मैनरोड तक जाने आने में तमाम लोगों को समाचार देने में 5-6 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा ना।
2-3 मिनट खामोश रहने के बाद स्त्री ने कहा, अभी दोपहर के पूरे 3 भी नहीं बजे हैं, तो आप आज की ही रात निकल सकते हैं और टॉरविले के तमाम लोगों को बता सकते हैं। आप सबको बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि वे आज की दोपहर तक शायद ही जिंदा बचे। वो व्यक्ति इस सुझाव के लाभ तथा नतीजे पर विचार करते हुए कुछ क्षणों तक कोई निर्णय नहीं कर पाया और अंत में बोला,
ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
वो निकल गया और कुछ देर बाद पीछे मुड़कर बोला,
तुमको कोई खास काम तो करना नहीं है, इसलिए तुम पके हुए 4 दर्जन सेब तोड़ लाओ और अंतिम संस्कार के लिए गांव से आने वाले लोगों के लिए कुछ खाने का सामान बना दो। तुम तो समझती ही हो कि हमें किसी भी तरह उन सब आए लोगों का कुछ सत्कार तो करना ही होगा। तुम सेब के वृक्षों के नीचे लकड़ियों की सहायता से भट्टी जला सकती हो, लकड़ियां एकदम सूखी हैं।
इतना कहकर वो शयन कक्ष के बाहर निकल आया और रसोई में गया तथा भोजन के सामान वाली अलमारी को खोला, डबल रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला, सतर्कता से एक छोटा टुकड़ा काटा, डबल रोटी को काटने से जो चूरा मेज पर गिरा था उसे समेट कर हाथ में लिया और सीधे मुंह में फांक लिया ताकि कोई चीज व्यर्थ ना जाए। उसके पश्चात उसने मिट्टी के बर्तन के तल में चाकू के द्वारा मक्खन को निकाल कर डबल रोटी के टुकड़े पर लगाया और चलता हुआ मवेशियों के बाड़े में आ गया। बंधे कुत्ते को खोला जिसने पुनः गुर्राना आरंभ कर दिया था। आंगन में खुदे गड्ढे के बाजू से जाती हुई पगडंडी की राह पकड़ी तथा टोरविले की तरफ जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। तन्हा रही स्त्री भी अपने काम में जुट गई। उसने आटा निकालकर उसे गूंधा और उसे बहुत देर तक गूंथती रही, बारंबार उसे उलटती और थाली पर पटकती रही। तब उसने पीले सफेद रंग की बड़ी सी एक लोई बनाई और मेज के एक कोने पर खिसका दिया। उसके पश्चात वो सेब लेने बाग में गई। डंडे से सेब तोड़ने पर पेड़ खराब हो सकता था, इसलिए वो स्टूल पर चढ़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ी। सावधानी से उसने सेबों का चयन किया। वो सिर्फ अच्छे और पके हुए सेब तोड़ रही थी तथा तोड़ तोड़ कर अपने एप्रन में इकट्ठा कर रही थी। तभी सड़क से किसी ने आवाज लगाई,
अरे मिसेस चिकोट, आप यहां?
उसने पीछे घूमकर देखा, आवाज देने वाला शख्स उनका पड़ोसी ओसिए फॉविच था। वहां का मेयर अपने खेत पर खाद छिड़कने के लिए जा रहा था और खाद की गाड़ी पर इत्मीनान से पैर लटकाए बैठा हुआ था।
हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मोसर ओसिए?
उसने पूछा।
आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा है अब?
उसने उत्तर दिया,
वे तो बस कतई मृत प्राण से ही हैं। दिन में पौधा रोपने की वजह से उनको दफनाने का कार्य शनिवार को शाम को 7 बजे होगा।
पड़ोसी ने उत्तर दिया,
ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय।
स्त्री ने अपने पड़ोसी की संवेदना का उत्तर दिया,
आपको बहुत बहुत थैंक यू, बाय,
और उसके पश्चात वो पुनः सेब तोड़ने में जुट गई। जैसे ही वो घर लौटी तो सीधे अपने मरणासन्न पिता को देखने गई। वो सोच रही थी कि शायद अब तक तो वो जरूर ही देह त्याग चुके होंगे, किंतु कक्ष के बाहर से ही अपने पिता की घरघराती सांसों की आवाजें उसने सुन ली। और ये सोचकर कि ऐसे में पलंग तक जाना बेकार है, वो खाना बनाने में जुट गई। उसने सेबों पर पेस्ट्री की पतली सी तह चढ़ाई और मेज के एक किनारे पर उन सेबों को रखती गई। और जब उसने 48 गोले बना लिए तब उसने भोजन तैयार करने की बात सोची और आलू उबालने के लिए केतली चूल्हे पर चढ़ा दी, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था कि उस दिन अवन का काम लेना बेकार है। तमाम दिन उसे अन्य कार्यों की तैयारी भी तो करनी थी। उसका पति शाम 5 बजे पुनः आया। वो घर के भीतर घुसा तो उसने झट से पूछा,
हाँ बताओ, क्या क्या सब कुछ समाप्त हो गया? उन्होंने देह त्याग दी?
उसने उत्तर दिया, नहीं अभी तक तो नहीं, उनका गला अभी भी घर्रा रहा है। वे दोनों फिर से वृद्ध को देखने गए। वो वृद्ध शख्स उसी स्थिति में था। उसकी घर्राती सांसें घड़ी के कांटों की भांति नियमित नजर आ रही थी। वो ना तेज हो रही थी न ही कम, वो प्रति सेकंड आ जा रही थी। महज आवाज की तीव्रता कम ज्यादा हो रही थी। दामाद ने उसकी तरफ दृष्टि डाली और बोला,
हमें पता भी नहीं चलेगा और ये मोमबत्ती की भांति बुझ जाएंगे।
वे पुनः रसोई में आए और चुपचाप भोजन करने बैठ गए। सूप के पश्चात उन्होंने ब्रेड बटर ली और जैसे ही तमाम बर्तन धुल गए वे दोनों पुनः मरने वाले वृद्ध शख्स के कक्ष में आए। स्त्री ने धुआं निकलते चिराग को अपने पिता के समक्ष हिलाया, किंतु मुंह से निकलने वाली ध्वनि के अलावा जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं। यही लगता था कि वो मर चुके हैं। पति पत्नी का पलंग कोने के एक कोठरीनुमा कक्ष में था। वे दोनों बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गए और रोशनी बंद कर दी और जल्द ही खर्राटे भरने लगे, जबकि दूसरी ओर से मरणासन व्यक्ति की घरघराहट उनके खर्राटों के साथ जुगलबंदी कर रही थी। छत पर चूहे इधर से उधर दौड़ते हुए उछल कूद मचा रहे थे। प्रातः की पहली किरण के साथ ही पति उठ बैठा। उसका ससुर अभी भी जीवित था। घरघराहट की ध्वनि इस बात की घोषणा कर रही थी। उसने अपनी बीवी को झकझोरा। अपने पति द्वारा इस तरह उठाने पर उसे कुछ क्रोध आया।
सुनो फैमी, मुझे लगता है कि वो मरना नहीं चाहते, अब तुम क्या करोगी?
वो अपनी बीवी के दिमागी निर्णयों का सम्मान किया करता था, इसलिए उसने सलाह ली। उसने उत्तर दिया, आप विश्वास रखें, वे आज का दिन नहीं निकाल पाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। जहां तक मेयर की बात है, वो हमारे पिता को कल दफनाने पर सवाल नहीं करेगा, जैसा कि उसने रिनॉर्ड के लिए किया था, जो ठीक बुवाई के वक्त ही मरा था। वो अपनी पत्नी के तर्क से पूरी तरह रजामंद था। खेत के लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने टर्नओवर पकाए और फिर खेत से संबंधित अन्य सभी शेष कार्य निपटाए। दोपहर को वो वृद्ध बीमार शायद चल बसा। बुआई के लिए आए जिन श्रमिकों को दैनिक मजदूरी पर रखा था, वे सभी उस शख्स को देखने आए जो कदाचित मरने को तैयार ही नहीं था। सबके अपने अपने विचार थे। उसके पश्चात वे एक एक करके खेत पर आए और काम पर चले गए। शाम को 6 बजे जब वे पिता को देखने आए तब भी वो पूर्ववत सांस ले रहे थे।
अब तुम क्या करोगी फैमी?
पति ने सवाल किया। बीवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वे दोनों मेयर से मिले, जो उनकी बात मानते हुए अगले दिन दफनाने को सहमत था। उसके पश्चात वे जन स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने गए। वो भी मोस्योर चिकोट पर उपकार करके सहायता देना चाहता था। वो उसके ससुर की मृत्यु का प्रमाण पत्र एक दिन पूर्व की तारीख को देने को भी राजी था। शांत मन से, इत्मीनान से पति पत्नी घर लौट आए। वे दोनों बिस्तर पर गए और गत रात्रि की भांति बिस्तर पर लेट गए, बूढ़े व्यक्ति की मध्यम घरघराहट के साथ अपने खर्राटों को जोड़ते हुए। जब वे उठे तब भी वो जीवित था। तब वे दोनों बुरी तरह परेशान हो गए और खींच गए। वे पिता पर अविश्वास करते हुए उनके पलंग के सिरहाने की तरफ खड़े हो गए, गोया वे जानबूझकर उन दोनों के साथ कोई गंदा मजाक या गहरी चाल चल रहे हों। वो उन्हें धोखा दे रहे थे और समझ बूझ कर उन्हें हलकान कर रहे थे, किंतु दोनों उनसे खासे खफा थे क्योंकि वो उन दोनों का समय नष्ट कर रहे थे। दामाद ने पूछा,
अब हम लोग क्या करेंगे फैमी?
उसने उत्तर दिया, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सबके साथ सदैव ऐसी ही मूर्खता होती रहती है क्या? वे घर आने वाले अतिथियों को कुछ भी नहीं कह सकते थे, जो अब बस कुछ ही देर में उनके घर पहुंचने वाले थे। तमाम बातें विस्तार से बताने के लिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। 6:50 पर लोगों का आना आरंभ हो गया। औरतें काले मातमी वस्त्रों में थीं, उनके चेहरे पर मातम, उदासी और वेदना के भाव थे। उनके चेहरे लंबे घूंघटों से ढके हुए थे। पुरुष लबादे नुमा ढीले ढाले कोटों में अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे दो की जोड़ियों में आ रहे थे और परस्पर अपने खेतों तथा उपज के बारे में चर्चा कर रहे थे। मिस्टर और मिसेस चिकोट बेहद सहमे हुए थे। वे सबसे दुख के मुद्रा में मिले और एकाएक उसी पल जैसे ही दुख जताने वालों का बड़ा समूह आया, वे दोनों दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्होंने अपनी मुश्किल की इस घड़ी के बारे में बताया, अपनी निरुपाय स्थिति बताई और आने वालों को बैठने के लिए कुर्सियां दी। इधर उधर जरूर लोगों से क्षमा याचना की। वे लगातार बोल रहे थे, एकाएक वे इतना अधिक बोल रहे थे कि किसी अन्य को बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे थे। वे एक समूह से दूसरे समूह के पास जा जाकर बातें करने लगे।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वे इतने ज्यादा जी सकते हैं।
मेहमान खामोश थे, उन्हें कुछ अफसोस था, गोया उन्हें यथेष्ट सम्मान जो नहीं मिल रहा था। हर एक अपने स्थान पर खामोश खड़ा या बैठा था और कुछ तो घर छोड़कर चलते बन रहे थे। चिकोट उन सबको यूं जाने नहीं देना चाहता था।
आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा खा तो लें, हमने टर्नओवर पकाए हैं, वो तो आप लोगों को खाने ही होंगे।
इस घोषणा से लोगों के चेहरों पर कुछ चमक आई। अब लोग दबे स्वर में बातें करने लगे थे। घर का बाहरी आंगन धीरे धीरे भरने लगा था। पहले आए लोगों ने बाद में आने वालों को समाचार दिया और वो सब परस्पर बतियाने लगे। औरतें भीतर के कक्ष में जाकर मरने वाले वृद्ध के अंतिम दर्शन करने गईं। उन सब ने पलंग को पार किया, धीरे धीरे स्वर में प्रार्थना बुदबुदाई और बाहर चली गईं। पुरुष जो इस दृश्य में कम रुचि ले रहे थे, उन्होंने कक्ष की खुली खिड़की से उस वृद्ध पर निगाह डाली। श्रीमती चिकोट अपनी परेशानी और दुख से सबको वाकिफ करा रही थी।
वो पिछले 2 से ऐसे ही हैं, न जीवित न मृत।
जब सबने मरणासन्न बूढ़े शख्स को देख लिया तो सबको खाने की स्मृति हुई, किंतु वे सब चौके के सामान के हिसाब से अधिक संख्या में थे। वे लोग द्वार के सामने मेज बाहर ले गए। 4 केक पेस्ट्री 2 में सजे थे, सुनहरे सिक्के और भूख बढ़ाने वाले। प्रत्येक ने एक एक केक पेस्ट्री लपकी। मिस्टर चिकोट ने भोजन की चीजों से अपना मुंह भरते हुए कहा,
यदि मेरे वृद्ध ससुर ऐसी स्थिति में हम लोगों को देख लें तो उनका हृदय टूट जाएगा। जब तक वे जिंदा थे, केक पेस्ट्री के दीवाने रहे।
एक मोटे हंसमुख ग्रामीण ने घोषणा की,
अब वो नहीं खाएंगे, सबकी बारी एक दिन आती ही है।
ये बात सुनकर घर में एकत्र हुए मेहमान दुखी होने की बजाय लुत्फ लेने लगे। अब उनकी बारी पेस्ट्री और केक खाने की थी। मिसेस चिकोट घर में हो रहे व्यय को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। वो बार बार भीतर आकर सेब का शरबत ला रही थी, घड़े के घड़े भीतर से बाहर आ रहे थे और उसी शीघ्रता में खत्म भी हो रहे थे। सब अच्छे खासे हंसी मजाक में चल रहे थे, चर्चाएं जोरों से होने लगी। वे सब चीख चिल्ला रहे थे गोया वे किसी दावत की मेज के इर्द गिर्द जमा हो। एकाएक ग्रामीण महिला जो अभी भी मरणासन वृद्ध शख्स के पास खड़ी थी, खिड़की पर खड़े हुए बाहर मस्ती भरा दृश्य देख रही थी। उसे लगा कि कदाचित उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तभी वो खिड़की पर घबराए से स्वर में चीखी,
वे चले गए, वे चले गए।
प्रत्येक शख्स अवाक रह गया। तमाम स्त्रियां दौड़कर ऊपर की ओर भागी अंतिम दर्शन करने। अब वो वाकई मर चुके थे, अब उनकी घर्राहट बंद हो गई थी। सभी एक दूसरे को घूर रहे थे, उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए। उनके मुंह में केक पेस्ट्री के बड़े बड़े टुकड़े भरे हुए थे।
वो बुढ़ा खूंसट बेहद गलत वक्त पर मरा है। चलो, जो होना था वो हो चुका। अब मृतक को सोमवार को दफनाया जाएगा। बस इतना ही भर था। उस अवसर पर भी और पेस्ट्री केक खाने को मिलेंगे। अतिथि पेट भरकर खा पीकर बातें करते चले गए। उन्हें प्रसन्नता थी कि उन्हें वो नजारा देखने को मिला और साथ में पेट पूजा भी हो गई। घर के मालिक और मालकिन अब अकेले एक दूसरे के समक्ष खड़े रह गए। पत्नी का चेहरा मौर्य क्रोध के लाल हो रहा था। वो बोली,
अब मुझे 4 दर्जन पेस्ट्री केक फिर से बनाने पड़ेंगे। काश ये कल रात को ही गुजर जाते।
पति स्वयं उदास और व्यथित था, कह उठा,
कोई बात नहीं फैमी, हमें कौन सा रोजाना ये सब करना होगा, एक दफा और सही।
आप सुन रहे थे कहानी जीवन और मृत्यु। इसे लिखा था मशहूर फ्रेंच लेखक गीद मोपासा ने और गाथा के जरिए आप तक पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।